एक तरह फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एक तरह एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं, सिंथिया बॉन्ड का रूबी। ये एक ऐसी किताब है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी पर सोचने पर भी मजबूर करेगी।
हाँ बिल्कुल, ये कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है।
हाँ, सिंथिया बॉन्ड जो इसकी लेखिका हैं, एक अमेरिकन राइटर हैं, और उनके लिखने में ना उन लोगों के लिए एक गहरी आवाज़ सुनाई देती है जिन्हें अक्सर समाज मतलब नज़रअंदाज कर देता है।
और दिलचस्प बात ये भी है कि वो पहले एक्ट्रेस थी।
हाँ,
और उन्होंने ब्लैकबर्ड राइटिंग कलेक्टिव भी शुरू किया।
हाँ, जो मुश्किल हालात वाले युवाओं को लिखने के लिए मंच देता है। रूबी उनका पहला ही उपन्यास था, 2014 में आया और आते ही मतलब छा गया। ओपरा बुक क्लब ने भी इसे चुना था।
कहते हैं 10 साल से ज्यादा लगे इसे लिखने में।
सोचिए, तो आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में गहरे उतरेंगे, रूबी और एप्रम की कहानी, उनके जज्बाती सफर को समझेंगे और जो मुद्दे ये उठाती हैं, जैसे ट्रॉमा, प्यार की ताकत, नस्लवाद, समाज का पाखंड, दबे हुए राज, इन सब पर बात करेंगे। कहानी हमें ले जाती है 1950 के दशक के पूर्वी टेक्सास। तो शुरू करें।
बिल्कुल, कहानी का सेटअप है लिबर्टी, पूर्वी टेक्सास का एक काल्पनिक कस्बा। सोचिए 1950 का दशक, एक ऐसी जगह जो ऊपर से तो धर्म की चादर ओढ़े है लेकिन अंदर नस्लवाद और न जाने कितने ही राज दफन है। मतलब माहौल बहुत घुटन भरा है।
हाँ, दम घोटू किस्म का।
और इसी माहौल में कई साल बाद न्यूयॉर्क से लौटती है रूबी बेल। लेकिन ये वो रूबी नहीं है जिसे लोग जानते थे। पहले उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मर्दों में हवस और नफरत जगाती थी और औरतों में जलन।
हाँ, एक तरह का बोझ थी उसकी खूबसूरती।
बिल्कुल, पर अब जो रूबी लौटी है वो एकदम टूटी हुई है। उसे डरावने साये दिखते हैं, कुछ क्या कहते हैं प्रेत आत्माएं हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ती।
और ये साये, ये भूत सिर्फ वहम नहीं है, है ना? एक तो डॉली का भूत है, वो बच्ची जिसकी मौत का इल्जाम रूबी पर लगा था।
हाँ, और दूसरा है हैंट, वो ज्यादा भयानक है, जैसे उसके साथ हुए सारे जुल्मों का, उसके दर्द का जीता जागता प्रतीक।
और कस्बे वाले वो क्या करते हैं?
वो तो बस उसे पागल या डायन कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, शायद ये ज्यादा आसान है उनके लिए।
हाँ, बजाय ये मानने के कि वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।
सही कहा, रूबी अपनी मरी हुई माँ के पुराने खंडहर जैसे घर में खुद को बंद कर लेती है। वो घर भी जैसे उसके अतीत की परछाइयों से घरा है। और यही एंट्री होती है एप्रम जेनिंग्स की।
एप्रम बिल्कुल अलग, शांत, नर्म दिल।
हाँ, जिसने बचपन से रूबी के लिए एक बहुत ही पाक मतलब अटूट प्यार अपने दिल में रखा है।
तो यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्यार में इतनी ताकत है कि वो नफरत और हिंसा से पूरी तरह बिखरी हुई एक रूह को फिर से जोड़ सके?
एब्राहम की कोशिश ही कहानी का दिल है ना? बिल्कुल, और उसे सिर्फ रूबी के अंदर के अंधेरों से नहीं लड़ना।
नहीं, उसे तो अपने परिवार, उस ढोंगी चर्च और पूरे समाज के खिलाफ खड़ा होना है।
रूबी का किरदार बहुत जटिल है, दुख से भरा हुआ। शुरू में तो लगता है जैसे उसकी पहचान ही उसका टूटा हुआ होना है। वो डॉली और हैनियट के सायों में इतनी घिरी है कि क्या सच है क्या वहम पता ही नहीं चलता।
और उसका अतीत वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। कम उम्र में ही उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत बन गई।
हाँ, कस्बे के ताकतवर मर्दों में, जिनमें गोरा शेरिफ था, चर्च का पादरी था, सबने उसका बेरहमी से यौन शोषण किया।
और ये कोई छुपी बात नहीं थी, ये एक तरह का मतलब सामुदायिक पाप था, मर्दों ने किया।
और औरतें वो अपनी चुप्पी से या उसे जज करके इसमें शामिल हो गईं।
बिल्कुल, फिर वो न्यूयॉर्क भागी, सोचा शायद बच जाएगी।
लेकिन वहां भी कहां चैन मिला, शोषण के बस तरीके बदल गए। तो जिसे लोग उसका पागलपन कहते हैं वो असल में उस दर्द से बचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, एक ढाल जैसी।
और उसका ठीक होना, उसकी हीलिंग, वो कोई सीधी राह नहीं है, वो तो यादों का एक भयानक चक्कर है जिसमें वो बार बार डूबती उभरती है।
ये सफर मुमकिन हो पाता है एप्रम की वजह से, उसकी हमदर्दी, उसका सब्र। वो धीरे धीरे रूबी को उस अंधेरे से बाहर खींचता है, वो यादों की शिकार होने से आगे बढ़कर अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत जुटाती है, जिंदगी चुनने की कोशिश करती है।
पूरी तरह ठीक होना शायद नामुमकिन हो, पर यह बदलाव ही बहुत बड़ा है।
और एप्रम जेनिंग्स वो इस कहानी की नैतिक रीढ़ है, उम्मीद की किरण।
हाँ, लिबर्टी कस्बे की जो जहरीली मर्दानगी है, जो हिंसा है, उसके एकदम उलट, उसकी कोमलता, उसका धैर्य, दूसरों का दर्द समझने की उसकी गहरी क्षमता, वो बिल्कुल अलग है।
उसका प्यार बिल्कुल निस्वार्थ है, कोई शर्त नहीं। सालों तक ये प्यार उसके दिल में एक राज की तरह था, वो बस दूर से रूबी को देखता था।
हाँ, और कहानी ये दिखाती है कि कैसे ये भावना फिर एक्शन में बदलती है। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, कुछ करना पड़ता है।
और वो करता है, पहले छोटी छोटी चीजें, चुपके से रूबी के बरामदे पर खाना रखाना,
उसके गंदे वीरान घर की सफाई करना।
हाँ, और फिर वो सीन आता है जो शायद कोई भूल ना पाए, जब वो लगभग बेसुध रूबी को नहलाता है। उसमें इतनी कोमलता है, इतनी वीरलिशकाइत, मतलब भेद्यता है, कि लगता है उनके रिश्ते की असली शुरुआत वहीं से होती है।
लेकिन उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है ना?
बिल्कुल
उसे अपने ही भाई रेवरेंड जेनिंग्स, जो पादरी है और महाढोंगी, उसके खिलाफ जाना पड़ता है। पूरे समुदाय के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है।
वो सब तो रूबी को बाहर फेंक देना चाहते हैं।
तो वो एक चुपचाप देखने वाले से रूबी का रखवाला बन जाता है, जांबाज रखवाला।
यही उपन्यास ये दिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास नहीं, वो एक काम है, एक्शन है।
जैसे जख्मों को धोना,
हाँ, या उन कहानियों को सुनना जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, दुनिया की बेरहमी के सामने ढाल बनना। एब्राम यही सिखाता है, प्यार एक क्रिया है।
अच्छा, अब जरा लिबर्टी कस्बे पर आते हैं। ये सिर्फ सेटिंग नहीं है, ये खुद एक विलन जैसा है।
सही कहा, ये उन समाजों का आईना है जो ऊपर से बड़े पवित्र दिखते हैं, पर अंदर कितने गुनाह और राज छिपाए होते हैं।
यहाँ का पूरा सिस्टम ही श्वेत वर्चस्व और पितृसत्ता पर टिका है। गोरे मर्दों का दबदबा, औरतें, अश्वेत लोग, सब हाशिए पर।
और मजे की बात ये कि धर्म भी इसमें भागीदार है। एफ्रेम का भाई रेवरेंड जिनिंग्स, वो इसी भ्रष्ट धार्मिक सत्ता का प्रतीक है।
हाँ, जो कमजोरों की हिफाजत करने की बजाय कई बार उनके साथ हो रहे अन्याय में शामिल हो जाते हैं।
यहाँ एक तरह का, क्या कहते हैं, सामूहिक अपराध बोध है। मर्द सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं रूबी के शोषण के, और औरतें,
वो अपनी चुप्पी से रूबी को जज करके वो भी भागीदार बन जाती हैं। कस्बे का एक ही लक्ष्य है, राज दबा रहे, शांति बनी रहे, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो।
और अगर रूबी ठीक हो गई तो वो राज खुल सकता है, ये उनके लिए खतरा है।
लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी है, माटांटे।
हाँ, माटांटे, कस्बे के किनारे रहने वाली वो रहस्यमयी समझदार बूढ़ी औरत, जिसे लोग कंजोर या जादू टोना करने वाली मानते हैं।
वो लिबर्टी के ढोंगी समाज के बिल्कुल उलट, इंसाफ और इलाज का एक अलग पारंपरिक रास्ता दिखाती हैं। वो सच्ची आध्यात्मिकता, लोक जादू का प्रतीक है।
बिल्कुल, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? रूबी लौटती है, एकदम साये जैसी, गंदगी में रहती है, उसे लगातार डॉली का भूत दिखता है, दूसरे भयानक नज़ारे दिखते हैं, अकेली, दुनिया से कटी हुई।
फिर एप्रेम आता है, धीरे धीरे देखभाल शुरू करता है, खाना देना,
घर साफ करना,
और फिर उसे नहलाना।
जैसे जैसे रूबी को एप्रेम की देखभाल से थोड़ी सुरक्षा मिलती है ना, कहानी फ्लैशबैक में जाती है, उसके भयानक अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में सच सामने आता है।
हाँ, पता चलता है कि कैसे बचपन में उसका यौन शोषण हुआ, कैसे उसे उस गोरी बच्ची डॉली की देखभाल करनी पड़ी, फिर एक हादसा हुआ, बच्ची मर गई,
और पूरे नस्लवादी कस्बे ने फौरन रूबी को दोषी ठहरा दिया बिना सोचे समझे।
तो ये भयानक अपराध बोध पहले से सहे गए यौन शोषण के जख्मों के ऊपर एक और गहरा घाव बन गया। यही वो भूत हैं जो उसे दिन रात सताते हैं।
जब एप्रम को ये एहसास होता है कि रूबी के जख्म सिर्फ जिस्मानी या दिमागी नहीं, रूहानी भी हैं, वो समझ जाता है कि कस्बे के चौच से मदद नहीं मिलेगी, वो ढोंगी हैं।
तब वो माटांटे के पास जाता है।
हाँ, माटांटे आत्माओं, श्रापों, पुरानी रस्मों को समझती हैं। वो एप्रम को रूबी के घर और उसकी रूह को पाक करने के लिए तरीके बताती हैं, रस्में बताती हैं।
ये जो लोक जादू है, ये कहानी में पारंपरिक धर्म के खोखलेपन के सामने एक ताकतवर विकल्प की तरह खड़ा होता है। दिखाता है कि सच्ची शिफा, सच्ची हीलिंग शायद कहीं और मिलती है।
कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे तनाव भरा मोड़, तब आता है जब रूबी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये उन मर्दों के लिए खतरा बन जाता है जिन्होंने उसका शोषण किया था।
उन्हें डर लगता है कि रूबी सच बोल देगी।
बिल्कुल, तो वो उसे हमेशा के लिए चुप कराने के इरादे से उसके घर पहुंच जाते हैं। ये एप्रम के लिए आखिरी इम्तिहान है।
और वो नर्म दिल एप्रम अब एक योद्धा बन जाता है।
हाँ, वो रूबी को बचाने के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से लड़ता है। यहाँ उसका प्यार सिर्फ भावना नहीं रहता, वो एक ढाल बन जाता है।
उपन्यास का अंत कोई, मतलब, हैप्पी एंडिंग वाला नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सदमा रूबी ने झेला है वो मिट नहीं सकता, लेकिन हाँ, अतीत का जो काला साया उस पर था वो टूट जाता है। वो भूत अब उसे पूरी तरह काबू में नहीं रख सकते।
एप्रम के अटूट प्यार के सहारे रूबी खुद को फिर से पाने के एक लंबे मुश्किल सफर पर पहला कदम रखती है।
अंत बहुत शांत है, थोड़ा अधूरा सा लगता है पर गहरा है। ये बताता है कि प्यार शायद जख्मों को पूरी तरह भर ना सके, पर हाँ, उनके साथ जीना जरूर सिखा सकता है।
तो चलिए अब उन मुख्य संदेशों पर बात करते हैं जो ये उपन्यास छोड़ जाता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा, ट्रॉमा का असर, गहरा सदमा जो कभी पूरी तरह जाता नहीं।
हाँ, बॉन्ड दिखाती हैं कि ये सिर्फ बुरी यादें नहीं हैं, ये इंसान की सच्चाई को, उसके जीने के तरीके को बदल देता है। रूबी के भूत सिर्फ कल्पना नहीं, वो उसके अंदर के दर्द की असली आवाज हैं।
और इलाज का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि उस अतीत को अपनी आज की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीना सीखना है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा सबक है बिना शर्त वाले प्यार की ताकत, जो मुक्ति दिला सकता है। एप्रम का प्यार वो उम्मीद की तरह है, धीरज वाला, बिना स्वार्थ का और हिम्मत वाला।
जैसे कहानी कह रही हो कि ऐसी गहरी हमदर्दी ही बुराई का मुकाबला कर सकती है।
तीसरा मुद्दा, कैसे औरतों के प्रति नफरत यानी मिसोजिनी और नस्लवाद एक साथ काम करते हैं। रूबी का दुख इसलिए और गहरा है क्योंकि वो एक अश्वेत औरत है।
हाँ, उपन्यास दिखाता है कि कैसे उस समाज में एक अश्वेत महिला के शरीर को सिर्फ एक चीज या गुनाह का पात्र समझा जाता था।
चौथा विषय है ढोंगी संस्थागत धर्म बनाम सच्ची जमीनी आध्यात्मिकता। लिबर्टी का चर्च पाखंड का अड्डा है,
जबकि माँ टांटे का लोक जादू सच्ची राहत और न्याय का रास्ता दिखाता है।
और आखिर में याददाश्त और समुदाय के राज, वो बातें जो कहीं नहीं जाती, वो सच जो छुपाए जाते हैं, वो न सिर्फ इंसान को बल्कि पूरे समुदाय को भूत बनकर सताते हैं।
राज कितना भी दबाओ बाहर आ ही जाते हैं। जैसे कहा भी गया है, अतीत कभी सचमुच अतीत नहीं होता।
जहां तक लिखने के अंदाज की बात है, बॉन्ड थर्ड पर्सन में लिखती हैं, मतलब कहानी सुनाने वाला बाहर से देख रहा है, लेकिन वो रूबी और एप्रम के मन में इतनी गहराई तक उतर जाती हैं, कई बार लगता है हम उन्हीं की सोच पढ़ रहे हैं।
और कहानी सीधी नहीं चलती, आज और अतीत के बीच कूदती रहती है। ये तरीका उस ट्रॉमा की उथल पुथल को दिखाता है ना, जहां पुरानी यादें बिना बताए कभी भी हमला कर देती हैं।
हाँ, और इसमें जादुई यथार्थवाद का भी पुट है, मतलब भूत प्रेत जादू ये सब कहानी की असलियत का हिस्सा हैं।
और दक्षिणी गॉथिक स्टाइल भी है, पुराना टूटा घर, छुपे हुए गुनाह, भयानक हिंसा, ये सब। लेकिन बॉन्ड इसे एक अश्वेत महिला के नजरिए से दिखाकर नयापन लाती हैं।
सिंबल्स का भी खूब इस्तेमाल है, रूबी का नाम, रूबी रंग, खून, जुनून, हिंसा, जिंदगी, डॉली का भूत, खोई मासूमियत, अपराध बोध, जंगल, नदी, खतरा भी, पना भी।
और भाषा, भाषा बहुत काव्यात्मक है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल भयानक चीजें बताने के लिए करती हैं, जिससे एक अजीब बेचैन करने वाला असर होता है।
हाँ, भाषा ऐसी है जो सीधे महसूस होती है। एक जगह शायद ये बात आती है कि प्यार खून से भी ज्यादा ताकतवर चीज है।
हाँ, हालांकि दोनों हमारी रगों में नदियों की तरह बहते हैं। ये दिखाता है कि चुनावा प्यार खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है।
इसे पढ़ना या सुनना आसान नहीं है, ये भावनात्मक रूप से थका देता है। यौन हिंसा का जैसा चित्रण है, उससे दुख होता है, गुस्सा आता है, डर लगता है। ये कोई हल्की किताब नहीं है।
बिल्कुल, एक तरफ इंसान की बेरहमी देखकर निराशा होती है,
लेकिन दूसरी तरफ एप्रम की नेकी और रूबी की हिम्मत देखकर इंसान की ताकत और प्यार की क्षमता पर हैरानी भी होती है।
इसकी छाप गहरी पड़ती है, ये पागलपन को लेकर हमारे नजरिए पर सवाल उठाती है।
हाँ, शायद जिसे हम पागलपन कहते हैं वो एक पागल दुनिया के खिलाफ एक समझदार प्रतिक्रिया हो। ये मिलीभगत, समुदाय की जिम्मेदारी, छुपी हुई हिंसा, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है।
और ये हमें सिखाती है कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पहुंच गए और बात खत्म।
नहीं, ये एक लंबा सफर है जो शायद बिना शर्त वाले प्यार की रोशनी में ही मुमकिन हो पाता है।
सचमुच ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कितने भी गहरे जख्म क्यों ना हो, बिना शर्त का प्यार और हिम्मत वो उम्मीद जगा सकते हैं।
और ये आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपने आसपास के समाजों में छुपे सच और उनसे जूझने की मुश्किल लेकिन जरूरी यात्रा की याद दिलाती है।
बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे समाज में लिबर्टी जैसे कितने अनकहे अनदेखे कोने हैं जहां ऐसी कहानियां शायद आज भी चुपचाप घट रही हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए सनायत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।